मानता है।
और हित करने वाला है, संबंधी नहीं है, तो उसको आदमी उदासीन अथवा दुर्हृदय मानता है। देह के अनुसार सारे संबंध चलते, देहात्मानी नाम। देह का संबंधी है तो संबंधी है, देह को आराम दे रहा है तो सुहृद है। बाकी आत्मा के सुख दुख को कौन समझता है और आत्मा का वास्तविक हित कौन कर रहा है, इसको तो लोग देखते नहीं और मन में मान लेते हैं। सारे संसार में आप देख ही रहे हैं, किसी को अपना सुहृद मानते हैं, किसी को दुर्हृद मानते हैं। पूरे देश स्तर पर कोई एक देश मानता है कि वो देश हमारा मित्र है पूरा, और कोई सबका वो देश हमारा शत्रु है, और कुछ देश न्यूट्रल उदासीन। पूरा देश स्तर पर, परिवार स्तर पर, व्यक्ति स्तर पर किस माने में वो सौहार्द करता है या किस माने में वो नुकसान करता है, केवल एक देहात्म बुद्धि है, अपनी धारणा है, कोई लौकिक सहायता कर दिया या लौकिक नुकसान कर दिया, उसी के कारण सब बदलता रहता है। जैसे सपना में, मान लीजिए सपना में कोई किसी को कुछ दे दिया तो उसको समझेगा सुहृद है, और कोई सपना में घर में से ताला खोल करके कुछ लूट लिया तो सपना में सोचता रहेगा मेरा अहित अहित है। न तो वहां हित है कोई और न तो अहित है, न तो किसी ने कुछ दिया है न कोई लूटा है, दोनों नहीं है। मन का अज्ञान है, आत्ममोह। तो ये मन का ज्ञान है केवल। तुम जो इस तरह से सोच रही हो कि ये मेरा भाई है और शिशुपाल मेरा बैरी है, इस तरह से सोचना ठीक नहीं। शिशुपाल से ज्यादा घातक है तुम्हारा भाई। शिशुपाल तो बेचारा दुल्हा बनकर आया था, तो विवाह करना वो तो रोका नहीं था। रुक्मिणी जी को पत्र लिखा भी नहीं था कि तुम कृष्ण से विवाह मत करो, सोचो भी मत, वो तो ये कुछ भी नहीं किया। स्वाभाविक रूप से बारात लेकर के आया था, यहाँ झगड़ा हो गया। लेकिन ये रुक्मिणी जो किया है तो रुक्मिणी के प्रति अभी भी भावना है कि भाई है, और शिशुपाल के प्रति तो अस्थायी भाव है कि वो बिल्कुल दुर्हृदय है, अहित है, यह है वह। तो यह आत्ममोह है, मन का भ्रम है, और यह अध्यात्म बुद्धि के कारण होता है, देह को मैं मानने के कारण होता है। यदि आत्मा के स्वरूप का ज्ञान हो तो व्यक्ति इस तरह से लोगों में बुद्धि नहीं करेगा। वह करेगा व्यवहार उस समय भी सुहृदय और दुर्हृद का, लेकिन कृष्ण भावना के प्लेटफॉर्म पर करेगा। जो कृष्ण भक्ति में सहायता करने वाला है उसको अपना सुहृद समझेगा, और कृष्ण की भक्ति में बाधा देने वाला है, चाहे वो स्वजन हो चाहे कोई हो, उसको वो शत्रु समझेगा। एक बार की घटना है, मीराबाई को उनके परिवार के लोग बहुत दुख दे रहे थे। मीराबाई बहुत बड़े राज घराने की वधू थी, तो घर के लोग नहीं चाहते थे कि इस तरह से यह कृष्ण का कीर्तन करे, नाचे गावे, आरती करे और साधु समाज में जाए, जिससे हमारी बहुत बड़ी बदनामी हो रही है। तो मीरा जी को मारने के लिए, जान से मारने के लिए बहुत प्रयास किए, उसके पहले समझाने का प्रयास किए, वो नहीं समझी। और कभी कभी तो मीरा जी स्पष्ट कह देते थे, मैं तो गिरधर आगे नाचूंगी, मैं कृष्ण के सामने नाचूंगी, और रूम बंद करके अकेले पग में घुघरू बांध करके और तानपुरा लेकर के गाती रहती थी। घर के लोग तो बिल्कुल जल जाते थे कि इतने बड़े खानदान के होकर के इसको क्या हो गया, वे महत्व नहीं समझ रहे थे। तो इसके बाद सांप भेजे थे हार कह करके और विष भेजे थे चरणामृत कह करके, वो पी गई मीराबाई, लेकिन उससे कुछ भी नुकसान नहीं हुआ भगवान की कृपा से, और सांप वास्तव में हार बन गए थे भगवान की दया से। अंत में इतना दुख दिए लोग कि मीरा जी ने एक पत्र लिखा तुलसीदास जी के पास अयोध्या काशी में, तुलसीदास जी उस समय काशी में रहते थे। वो पत्र पूरा पद में है, मीरा जी पूछती हैं कि हे साधु शिरोमणि, आपकी शरण में मैं हूँ, मेरे घर वाले मुझे बहुत दुख दे रहे हैं, मुझे इसमें क्या करना चाहिए आप बताइए, मैं क्या करूँ, घर वालों की बात मानूँ कि मैं कृष्ण का भजन करूँ, क्या करूँ, आप जो कहेंगे मैं करूँगी। गुसाई शब्द कह करके बार-बार संबोधित करती हैं। तब तुलसीदास जी ने एक पत्र लिखा था इनको, उसमें लिखा था जाके प्रिय न राम वैदेही तजी ताहि कोटि वैरी सम जद्यपि परम स्नेह। वे लिखते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी की, जिनको सीता राम प्रिय नहीं है, भगवान प्रिय नहीं है, ऐसे परम स्नेही को भी भले अपना स्वजन हो लेकिन उसको कोटि वैरी के समान त्याग देना चाहिए, कोटि कोटि वैरी के समान त्याग देना चाहिए। तो उसमें उदाहरण देते हैं, तजय पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी बलिगुरु तजय कंत ब्रज बनितनि भय मुद मंगलकारी। उदाहरण दिए कई, भगवान के लिए प्रहलाद महाराज ने अपने पिता का त्याग कर दिया, अपने पिता की बात नहीं माने, यहाँ तक कि उनके ही कारण पिता मार दिए गए, उस समय भी प्रहलाद महाराज अपने पिता के मारने का स्वागत कर रहे थे, भगवान से उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा किया आपने इनका वध कर दिया। तो तजो पिता प्रहलाद, प्रहलाद अपने पिता की आज्ञा नहीं माने, छोड़ दिए पिता को, उन्हीं कारण मर भी गए पिता। इस तरह प्रहलाद महाराज ने त्याग किया, भगवान को नहीं छोड़े, पिता को छोड़ दिया। तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु, और विभीषण जी ने भाई का त्याग कर दिया। विभीषण जी बार बार समझा रहे थे रावण को, सीता जी को लौटा दो, भगवान से बैर मत करो, ये ठीक नहीं है। रावण नहीं मान रहा था, अंत में उसने पैर से आघात किया विभीषण जी को कि जो तुम नीति मुझे सिखा रहे हो जाकर उधर सिखाओ, अर्थात भागो लंका से, यहां मत रहो, और छीन लिया घर द्वार। तो विभीषण जी भाई का त्याग कर दिए, चले गए भगवान के साथ, जन्म हुआ था सहोदर भाई थे लेकिन छोड़ दिए, रावण का त्याग कर दिए। तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी, और भरत जी अपनी माँ कैकेयी का त्याग कर दिए। वनवास जब चले गए भगवान राम, उसके बाद भरत जी कैकेयी को एक बार भी जीवन में माँ नहीं कहे, और कभी भी उसे भेंट नहीं करते थे। तो भरत जी ने माँ का त्याग कर दिया, बलि गुरु तजय, और बलि महाराज ने गुरु का त्याग कर दिया। जो गुरु भगवान को समर्पण में बाधा दे रहे थे, भगवान को दिया जा रहा था धन सारा, और गुरु कहता है कि इसमें से बचा करके दो, सब मत दे दो, और तीन पग तुम पूरा नहीं कर पाओगे, तीन पग में तीनों भुवन ले लेंगे, ये भगवान है, साक्षात विष्णु है। तो बलि महाराज ने कहा तो और खुशी की बात है, तो सब कुछ दे दूंगा, वैसे तो नहीं भी देता लेकिन जब भगवान है तब तो दे दे ही दूंगा, और यहाँ तो कहते हैं यदि भगवान है और नहीं दूंगा तो मार कर भी ले लेंगे, तो जस भी जाएगा धन भी जाएगा, तो इसलिए दे देना ठीक है, भगवान के सामने बात कर रहे हैं। यद्यपि श्रीपाद शुक्राचार्य के मन में भगवान प्रवेश किए थे बलि महाराज के जस को बढ़ाने के लिए, शुक्राचार्य ऐसे व्यक्ति नहीं है कि रोक दें, लेकिन कोई भी व्यक्ति यदि मान लीजिए गुरु है और अपने शिष्य को भगवान की सेवा करने से रोके, तो उस समय उतने अंश में उस गुरु का वाक्य माननीय नहीं है, उस गुरु की बात का त्याग किया जा सकता है। जहां डायरेक्ट भगवान आए हैं याचक बनकर मांग रहे हैं, हाथ पसार रहे हैं, लक्ष्मी जी का हाथ जिस हाथ से पकड़े हैं उस हाथ को पसार कर मांग रहे हैं, कौन ऐसा अभागा है जो सब कुछ कृष्ण को नहीं दे देगा, सब कुछ दे देगा, आखिर सब कुछ तो उनका ही है, भगवान का ही सब कुछ है, देह धन सब कुछ, और वही आए हैं मांगने के लिए, क्यों नहीं देते हैं। जैसे कोई पिता अपने पुत्र के पास, छोटे पुत्र के पास जाए और कहे कि बेटा ये खाने का सामान हमको दो, वही बाजार से लाया है सामान, पिता पुत्र को दे रहा है और पुत्र से कहे कि हमको भी थोड़ा दो खाने के लिए। पुत्र यदि दे देता है तो पिता को कितनी प्रसन्नता होती है। तो पिता खाता नहीं है, फिर लौटा देता है, ठीक है नहीं तुम्हारे लिए लाया हूं। परंतु यदि पुत्र छोटा सा बेटा न दे तो उसका न देना बहुत बुरा लगता है, नहीं 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 दूंगा, जबकि पिता का ही दिया हुआ है। तो उसी तरह से सब कुछ कृष्ण का दिया हुआ है और कृष्ण स्वयं आकर के मांग रहे हैं पर्सनली कि हमको ये चाहिए, तो उस समय देने के लिए कोई तैयार हो और दूसरा व्यक्ति कहे कि नहीं नहीं ठीक, भगवान तो मांगते ही रहेंगे, संसार को भी देखना है, आगे जीना है, खाना है, सब क्यों दे रहे हो। अरे और जगह पर तो देखा जाएगा कि कम देना चाहिए, व्यवहार कुशल होना चाहिए, लेकिन भगवान को देने में क्या व्यवहार कुशलता जरूरी है, उन्हीं का सब कुछ है, भगवान देंगे फिर जितनी जरूरत होगी जैसे भी होगी। तो बलि महाराज शुक्राचार्य की अवहेलना कर दी है, यहाँ तक शुक्राचार्य साप भी दे दिए पर फिर भी वे सत्य से डिगे नहीं, भगवान को उन्होंने संपूर्ण पृथ्वी दान कर दिया। तो भय मुद मंगल कार्य बलिगुरु तजे कंत ब्रज बनितने, और ब्रज बनिताओं ने गोपियों ने अपने अपने पतियों का त्याग कर दिया, जो कि एक स्त्री के लिए पति का त्याग करना कितना जघन्य पाप है, दोष है इस लोक में, इसको तो सभी समझ सकते हैं। परंतु श्री कृष्ण से प्रेम करके श्री कृष्ण की सेवा के लिए गोपियों ने अपने पतियों का त्याग कर दिया, कोई दोषी नहीं कहता है। उद्धव जैसे, ब्रह्मा जी जैसे व्यक्ति गोपियों के चरण की रज चाहते, रज की प्रार्थना कर रहे हैं, वंदे नंद ब्रजस्त्री नाम पाद रेणु अभिक्षण सा जासम हरि कथोत गीतम पुनाति भुवनत्रय। उद्धव जी कहते हैं कि नंद महाराज के गोकुल में रहने वाली स्त्रियों के चरण रेणु की मैं वंदना करता हूँ, जन्म जन्म में लौटता रहा इसी राज में, चरण राज में, तो मंगलमय हो गई। पति का त्याग की कृष्ण के लिए, लेकिन भय मुद मंगलकारी, सारा जगत जस गाता है, सभी प्रशंसा करते हैं। तो तुलसीदास जी ये सब बातें लिख रहे हैं कि भगवान के लिए छोड़ देना चाहिए, अगर बाधा देते हैं तो कौन कौन बाधा दिए, तो किसने उनको छोड़ा, इसका उदाहरण भी आगे वे कहते हैं कि नाते नेह राम के मनियत सुहृद सुसिद्ध जहां लो, अंजन कहा आंखि जही फूटे बहुत कहो कहां लो। जितने भी संसार में प्रेम के विषय हैं, कोई सुहृद है, संबंधी है, सेव्य है, उसे राम के नाता से मानना चाहिए। यदि राम से प्रेम करता है और राम से प्रेम कराने में सहायक है, तब तो सेव्य है, सुहृद है, बंधु है, अन्यथा नाम होने से क्या होगा। अगर भगवान की भक्ति में बाधक है और नाम है बेटा या पत्नी भाई बंधु कुछ भी नाम है, तो नाम से क्या होगा। अंजन कहा आंखी जही फूटे बहुत तक कहो कहां लो। मान लीजिए किसी ऐसे कीचड़ का या विष का नाम लिख दिया गया हो अंजन, और उसको लगाते ही आंख फूट जाए, तो उसको अंजन कहेंगे। अंजन कहा आंख जही फूटे, अंजन लगाया जाता है कि आंख में जो कम शक्ति है देखने की वो भी ज्यादा हो जाए, लेकिन ऐसा अंजन हो जिसे आंख में लगाते ही आंख फूट जाए, तो उसको अंजन कहेंगे। नाम अंजन कोई दे दे तो इसे क्या, उसको तो लगाएंगे नहीं। वैसे ही संसार में नाम दिया गया है, पत्नी भाई पिता या चाचा साला संबंधी जो कुछ भी, इसके लिए है ना कि जीव को ये हेल्प करे सब तरह से कृष्ण के तरफ बढ़ने में, और कृष्ण के तरफ बढ़ने में कोई रोके, बाधा दे, चिंता में डाले, तो फिर वह सुहृद नामधारी सुहृद नहीं है। नाम है पुत्र या स्त्री आदि कुछ भी, लेकिन वो तो बहुत बड़े शत्रु हो गए। जैसे वह अंजन जो आंख में लगाने से आंख को फोड़ दे और अंधा कर दे, तो वह अंजन अंजन नहीं है, वो तो महाघातक विष है वास्तव में। इसीलिए आपके लिए यह उचित है, तुलसीदास जी ने लिखा है आगे कि आप कृष्ण का भजन कीजिए, छोड़िए बंधुबान, घर छोड़ दीजिए। वह पत्र पा करके मीरा जी घर छोड़ दी, राजघराने से चली गई। यह सर्वविदित बात है उत्तर भारत में, तुलसीदास ने इस तरह से पत्र लिखा था और मीराबाई ने लिखा था। तो उन्होंने ये सलाह दिया था, मीराबाई ने त्याग कर दिया था। यहां पर भगवान ये समझा रहे हैं रुक्मिणी जी को कि ठीक है, तुम्हारी ये जो बुद्धि है इतना, ये आत्ममोह है, यह तो है लौकिक दृष्टि से ठीक है, लेकिन परमार्थ की दृष्टि से यह बिल्कुल गलत है। इस तरह का भाव नहीं करना चाहिए, इस तरह रो मत। और अब इसके बाद जो एक श्लोक चालू करते हैं, एक एव परोह्यात्मा सर्वे सामपि देहिना नानेव गृह्यते मूढ़ेर जथा ज्योतिर जथा नभः। अब इसकी व्याख्या में समय लगेगा, कई लिंक है, इसलिए मैं आज यहाँ बंद करता हूँ। कल रुक्मिणी जी का विवाह है, यह कथा थोड़ी सी कह करके, और जो वास्तव में रुक्मिणी मंगल जिसे कहा जाता है, द्वारका में पहुंच करके भगवान का पहला विवाह होगा, बहुत धूमधाम से द्वारका सजाई जाएगी। सगाई तो हो गई अभी वेडिंग बाकी है, विवाह द्वारका में पहुंच करके होगा। तो कल बहुत आनंद का दिन है, रुक्मिणी जी का विवाह होगा और श्री बलराम जी के प्रवचन का शेष अंश भी पूरा किया जाएगा। हरे कृष्ण। अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्री श्रीनाथ जी की जय। श्री श्री गौरताई की जय। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी की जय। ग्रंथ राज श्रीमद भागवतम की जय। गौर प्रेमानंद। ऑल ग्लोरी टू द श्रीमद भागवतम। ऑल ग्लोरी टू द श्रीमद भागवतम। All glories to the Sunday workers. All glory to Sri Sri Guru Granth. Namam Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Iti Namine Namaste Saraswat Deve Gauravani Pracharine निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य सतारे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। आत्ममोहो नृणामेश कल्प्यते देवमायया सुहृद्दुर्हृद् उदासीना इति देहात्ममानिनां। एक एव परो ह्यात्मा सर्वेषामपि देहिनां नानेव गृह्यते मूढैः यथा ज्योतिर्यथा नभः। देह आद्यन्तवानेश द्रव्य प्राण गुणात्मक आत्मन्य विद्या क्लृप्त संसारयति देहिनां नात्मनोन्येन संयोगो वियोगश्च सतः सति तद्धेतुत्वात् तत्प्रसिद्धेः दृग्रूपाभ्यां यथा रवेः जन्मादयस्तु देहस्य विक्रियानात्मनः क्वचित् कलानामिव नैवेन्दोर् मृत्तिर्यस्य कुहुरिव यथाशयानयात्मानम् विषयान् फलमेव च अनुभुङ्क्तेऽप्यस्यत्यर्थे तथाप्नोत्यबुधो भवान् तस्मादज्ञानजं शोकम् आत्मशोषविमोहनम् तत्त्वज्ञानेन निर्हृत्य स्वस्था भव शुचिस्मिते एवं भगवता तन्वी रामेण प्रतिबोधिता वैमनस्यं परित्यज्य मनोबुद्ध्या समादधे। आत्ममोहो नृणमेव स कल्पते देव मायया सुहृद्दुहृदुदासीना इति देहात्ममानिनाम् एक एव परो ह्यात्मा सर्वेषामपि देहिनाम् नानेव गृह्यते मूढे यथा ज्योतिर्यथा नभः देह आद्यन्तमानेश द्रव्य प्राणगुणात्मकः आत्मन्य विद्यया क्लृप्तः संसारयति देहिनम् नात्मनोन्येन संयोगो वियोगश्च सतः सति तद्धेतुत्वात् तत्प्रसिद्धेः दृग्रूपाभ्यां यथा रवेः जन्मादयस्तु देहस्य विक्रियानात्मनं क्वचित् फलानामिव नैवेन्दो मृत्तिर्यस्य कुहुरिव यथाशयानायात्मानं विषयान् फलमेव च अनुभुङ्क्तेऽप्यसत्यर्थे तथा प्राप्नुमो भवान् तस्मादज्ञानजं शोकम् आत्मशोषविमोहनम् तत्त्वज्ञानेन निर्हृत्य भवसुतिस्मिते एवं भगवता तन्वी रामेण प्रतिबोधिता वैमनस्यं परित्यज्य मनोबुद्ध्या समादधे। आत्ममोहः
आत्ममोहः
आत्मा के विषय में अज्ञान
आत्मा के विषय में अज्ञान
मनोभ्रम
नृणाम
मनुष्यों का
ऐसा
या कल्प्यते संभव होता है देव माया भगवान की माया से सुहृद हितैषी दुर्हृद शत्रु उदासीना और उदासीन इति इस प्रकार का विचार देहात्ममानिनाम देह को मैं मानने वालों का तो इसके पहले कथा में इस बात का निरूपण किया गया था जब भगवान हाथ में खड़ग लेकर रुक्मी का वध करने चले तब श्री रुक्मिणी जी घबरा गई उनका मुख सुख के मारे सारे अंग कांपने लगे और कतरता से उनका श्रृंगार बिगड़ने लगा फूल की माला और भी हार भी विस्तृत होने लगे उन्होंने अपने प्रियतम भगवान के चरणों को पकड़ लिया और प्रार्थना करने लगी रोने लगी कि हमारे भाई को छोड़ दीजिए परंतु भगवान ने रुक्मी का वध तो नहीं किया परंतु उसे विरूप किया उसके केस काटकर इस बात से भी रुक्मिणी जी बहुत दुखी हुई थी तो रुक्मी के प्रति जो सहज सद्भाव है रुक्मिणी जी का अपने भाई के प्रति वह किस प्रकार अज्ञान से उत्पन्न हुआ है इसको बलराम जी समझाना चाहते हैं भगवान इस प्रकार का विचार यह तुम्हारे बुद्धि का भ्रम है तवेयम विषमा बुद्धि तुम्हारी यह बुद्धि ठीक नहीं है इस तरह का विचार करना इस पर रुक्मिणी जी मान लीजिए प्रश्न कर यह कैसे यदि मैं अपने भाई को सुहृद मानती हूँ तो यह हमारी बुद्धि असमीचीना कैसे है कैसे गलत ऐसे वो बोल नहीं सकते हैं बलराम जी के सामने लेकिन एक अर्थ को प्रकाशित करने के लिए इस प्रकार की संभावना व्यक्त की जाती है श्री कृष्णधर स्वामी भागवत की टीका लिखे हैं तो इसी विधि से लिखे प्रश्न उत्थापित करते जाते हैं कैसे हम माने कि हमारा ये भ्रम है क्या भाई के प्रति इतना स्नेह है दिखाना और उसका केस काटने पर रोना यह अज्ञान है प्रश्न हो सकता है ना संसार में तो अन्य लोग इस बात को कहेंगे वाह कितनी अच्छी बहन है भाई इतना विरोध किया फिर भी बहन बहुत महान है ठीक है इस प्रकार का विचार करना लेकिन केस काट दिए जाने पर इस तरह रोना शोक में डूब जाना यह उचित नहीं था और वह अभी रुक्मी जैसे भाई के लिए इस बात को श्री बलराम जी यहाँ व्यक्त कर रहे हैं यह केवल रुक्मिणी जी की बात नहीं है वो तो भगवान की प्रिया है उनमें क्या ज्ञान होगा वास्तव में श्रीमद् भागवतम में ये जो प्रसंग दिए गए हैं खासकर जहाँ तत्व ज्ञान दिया जाता है सब हम लोगों को दिया गया है मानना चाहिए कि भगवान श्री बलराम जी हम लोगों को ज्ञान दे रहे हैं ऐसा नहीं है कि भगवान केवल लीला करते हैं युद्ध करते हैं बाकी बोलते नहीं हैं बीच बीच में वो ज्ञान देते जाते हैं जैसे भगवान श्री कृष्ण कुरुक्षेत्र के युद्ध में अपने मित्र को समझा रहे हैं तो वह समझाना समग्र मानव जाति के लिए सबसे बड़ा ज्ञान कोश हो गया। इसी प्रकार यहाँ भगवत प्रिया रुक्मिणी देवी को समझा रहे हैं भगवान बलराम जी, लेकिन उनका आशय है संसार को ज्ञान देना। ये समझा रहे हैं कि संसार में जो जीव की भावना हो रही है कि यह मेरा सुहृद है, यह हमारा अपना व्यक्ति है, और वह दुर्हृद है, वह पराया है, शत्रु है, अथवा वह तटस्थ है, न्यूट्रल है, इस प्रकार का विचार देह को मैं मानने वालों का होता है। इति देहात्म मानिना, देहात्म मानी का अर्थ है देह को ही आत्मा जो मानता है वह देहात्म मानी। इन शब्दों को समझना चाहिए। एक बार गांव में मैं बारंबार इस शब्द का प्रयोग कर रहा था, देहात्म बुद्धि, देहात्म बुद्धि, देहात्म बुद्धि। कई बार गीता पर प्रवचन कर रहा था तो ऐसे इस शब्द को कह रहा था। तो एक व्यक्ति कथा प्रवचन सुनने के बाद कहा, तो महाराज यह ज्ञान केवल देहात में है, शहर में नहीं है। तो भूख तो गई, वो बेचारा इतना भी नहीं समझ रहा था। क्या शहर में ऐसे अज्ञानी लोग नहीं है? आप कह रहे हैं देहात में ये बुद्धि है, देहात में। तो जो फिलोसफिकल शब्द हैं, टर्म है शास्त्रों में, बहुत बड़ी बात को छोटे से कोड में कह देते हैं। देहात में बुद्धि, देह में आत्मभाव, मैं यह देह हूँ, देह से मैं पृथक हूँ, और देह के धर्मों से बिल्कुल मैं अलग हूँ। इस बात की जानकारी बहुत कम लोगों को इस संसार में है। देह जन्म लेता है, आत्मा जन्म नहीं लेता है। भगवान गीता में यही से प्रारंभ करते हैं ज्ञान, न जायते मृते वा कदाचित, नायम भूत्वा भविता वा न भूय, अजो नित्य शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। यह आत्मा नित्य है, नित्य काल से बहुत पहले से ही है, अनादि काल से अनंत काल तक रहेगा। शरीर पहले नहीं था और नहीं रहेगा बाद में। शरीर सब समय नहीं था, यह तो देखा जाता है। बच्चे जन्म लेते हैं तो कितना छोटा छोटा होते हैं, और यह भी पता चलता है कब से उनका शरीर बनना गर्भ में प्रारंभ हो रहा है। डॉक्टरों को तो विशेष रूप से पता होगा कितना छोटा शरीर बनना चालू होता है धीरे धीरे, कितने महीने लग जाते हैं। परंतु आत्मा इस तरह से बनता नहीं है, वह है। न जायते शरीरम तो जायते, शरीर तो जन्म लेता है परंतु आत्मा जन्म नहीं लेता है, वो पहले से ही रहता है। ठीक है, न जायते परंतु मृियते किम, क्या मरता है? भगवान कहते न जायते न मृियते कदाचित, कभी भी ये जन्म नहीं लिया है और न कभी मर सकता है। और शरीर निश्चित जन्म लिया है, मरना निश्चित। जब तक से ही ध्रुव जन्म में तस्य, शरीर तो जाएगा। न जायते मृियते वा कदाचित नायम भूत्वा भविता वा न भूय, नायम भूत्वा यह कभी हुआ नहीं है। मनुष्य सोचेगा कि आखिर कभी तो आत्मा का जन्म हुआ होगा। भगवान कहते नहीं, ऐसा कभी भी समय नहीं था जब ये हुआ, और न तो आगे होगा, और न तो इसमें भूया हो रहा है। शरीर वर्तमान में भी हो रहा है। डॉक्टर लोग बताते हैं कि इसके सेल्स कैसे कैसे नष्ट होते रहते हैं, नए बनते रहते हैं, इसको भूया कहते हैं। हो रहा है, शरीर बढ़ रहा है, चल रहा है धीरे धीरे, कुछ इसमें विक्रियाएं हो रही है, लेकिन आत्मा इस तरह नहीं है। न तो कभी जन्म लिया है, न हुआ है, न आगे ऐसा होगा कि होगा, और न तो इस समय कुछ बढ़ रहा है या घट रहा है। भूया न भूतवा न भविता न भूया, फिर उसी को भगवान कह रहे हैं अज नित्य शाश्वतो यम पुराण। यह अज है, नित्य है, शाश्वत है, पुराण है। पुराण मतलब अनादिकाल से है। न हन्य ते हन्य माने शरीर, शरीर के नष्ट होने पर यह नष्ट नहीं होता। यह प्रत्येक व्यक्ति के का अपना ज्ञान है। हम लोग बहुत बहुत बात जानते हैं। जैसे मान लीजिए अमेरिका का नक्शा कोई देख करके धड़ाधड़ बतावे कि ये स्थान यहाँ है, ये है, वो है, वो है, बिना देखे भी। यह भारतवर्ष का ज्ञान, मेरे कहने का मतलब है कि मान लीजिए उसको ज्ञान हो ज्योग्राफी का, भूगोल, ये सब ऐसे ऐसे, फिजिक्स का ज्ञान है, रसायन शास्त्र का ज्ञान है, केमिस्ट्री का सब ज्ञान, वो कह सकता है हमको ये ज्ञान है, वे ज्ञान है। और कोई पूछे कि तुम कौन हो, ये जानते हो, तो वो नहीं बता पाएगा कि मैं कौन हूँ। अगर इस तरह से प्रश्न किया जाए पश्चात जगत में कि आप कौन हैं, तो आदमी सीधे बताएगा अपना कोई नाम, पिता का नाम, माता का नाम, और अपने बारे में बताएगा कि गोरा हूँ कि काला हूँ कि क्या हूँ, ये हूँ। तो ये तो शरीर का परिचय हुआ। आत्मा शरीर से भिन्न है। भगवद गीता का प्रारंभिक ज्ञान यही है कि आत्मा को शरीर से बिल्कुल भिन्न समझ लेना। और श्री बलराम जी यहीं पर ये ज्ञान दे रहे हैं। तो शरीर को मैं मानने के कारण ही शरीर के संबंधियों में या शरीर को सुख देने वाले लोगों में यह बुद्धि होती है कि ये हमारा हितैषी, हमारा सुहृद। देह भगवान ऋषभ ने कहा है कि यह देह आत्मा को दिया जाता है उसको दुख देने के लिए। क्लेशद क्लेशान ददाति इति क्लेशद, जो बहुत क्लेश दे, दुख दे, उसको क्लेशद कहते हैं। अपने पुत्रों को उपदेश करते हुए भगवान ऋषभ देव कहते हैं कि बेटा यह देह क्लेश देने के लिए है। क्लेश देने वाले पारक्य और अचित जड़ शरीर को आत्मा मान लेता है कि यही मैं हूँ। कितना बड़ा अज्ञान है उसका, और उसी अज्ञान के अनुसार उसके सारे व्यवहार होते हैं। तो यहाँ पर जैसे रुक्मी की दशा है, नहीं रुक्मिणी जी की दशा है। रुक्मिणी जी अपने भाई के विरूप करण पर इतना शोक कर रही हैं, परंतु वहीं पर हजारों वीर मार दिए गए हैं, उनके विषय में उनको कोई शोक नहीं हो रहा है। बल्कि भगवान के पास उन्होंने पत्र लिखा था कि निर्मथ चैद मगधेन्द्र बलम प्रसह्य मामराक्ष सेन विधिनोद बहवेज सुल्का, हे प्रभु आप जरासंध आदि की सेना को मथ करके, मथने का मतलब उनको मार करके, तहस नहस करके राक्षस विधि से मेरा पाणी ग्रहण कीजिए। तो जरासंध शिशुपाल आदि मारे जाए जान से तो इसके लिए खुशी है, और भाई यदि कुरूप केवल कर दिया गया तो इस पर इतना बड़ा दुख हो रहा है। तो भगवान को एक अवसर मिल गया उपदेश करने का, एक बहाना मिल गया जीवों को शिक्षा देने का। देखिए क्या भावना है जी। तो सबसे पहले श्री बलराम जी ने यह कहा कि तुम्हारी यह बुद्धि ठीक नहीं है, इस प्रकार की भावना करना। तो तीन कारण बताया श्री बलराम जी ने कि क्यों तुम्हारी बुद्धि ठीक नहीं है। इसलिए कि प्राणियों में जो दुर्हृद हैं, वास्तव में तुम्हारे अहितकारी हैं, उन्हीं में तुम सुहृद की भावना कर रहे हो। तुम्हारे जीवन में सबसे बड़ा अहित करने वाला तो रुक्मी हुआ, भगवान के साथ संबंध होने में बाधक बना, इस तरह से कहते हैं कृष्ण को मारने आया, प्रतिज्ञा करके आया है ना राजाओं की सभा में कि कृष्ण की हत्या करके अपने बहन को लौटाऊंगा, यह कह करके आया, और आने के बाद भी प्रयास किया है। तो यह तुम्हारा दुर्हृद है, अहितकारी है, लेकिन इसमें तुम सुहृद भावना कर रही हो, तो यह तुम्हारी बुद्धि ठीक नहीं है। और दूसरी बात यह है कि तुम ये सोच रही हो कि इसका अच्छा होना चाहिए, इसका भद्र होना चाहिए। तो रुक्मी का भद्र तो यही है ना कि कृष्ण को नहीं रहना चाहिए संसार में, या तुम्हारा विवाह भी कृष्ण से नहीं होना चाहिए। यही उसका भद्र है ना। तो अगर ऐसा किया जाए तो और सबका अभद्र ही हो जाएगा, जो वास्तव में सुहृद है उनके खिलाफ होगा। तो रुक्मी को यदि दंड नहीं दिया जा रहा है तो यह सारे सुहृदों को दुख का कारण होगा, इसका मतलब उनको दंड दिया गया। दूसरी बात यह है कि एक ही स्थान में तुम शिशुपाल आदि के प्रति ये भावना कर रही हो कि ये लोग मारे जाए, और उन्हीं के ग्रुप का है बल्कि लीडर है, और उसको ये कह रही हो कि इसको क्रूप नहीं करना चाहिए, ये गलत है, तो और लोग मारे जाए, इसको श्री बलराम जी कह रहे हैं ये विषमा बुद्धि, तुम्हारी विषम बुद्धि है, और इसी का समर्थन में कर रहे हैं कि यह जो बुद्धि है ये दुर्हृदय या सुहृद या उदासीन, इस संसार में सब भौतिक देह के ऊपर चलता है, वास्तव में आत्मा का हितैषी कोई और होता है या आत्मा का विरोधी कोई और होता है। जैसा मैं कल व्याख्या में कुछ कहा था कि श्री कृष्ण के विषय में कोई बताता है और श्री कृष्ण से यानी हाउ जोड़ता है व्यक्ति, तो यही है आत्मा का हित, अन्यथा जीव को उसके स्वरूप में करने के अतिरिक्त और जो भी सहायता है वह सब बेकार है। जैसे भागवत में उदाहरण दिया गया है, हरि भी साक्षात भगवान शरीर नाम आत्मा झसाड़ा में तो यमीक्षितम हित्वा महानस्तम यदि सज्जते गृहे तदा महत्वम वैसा दंपति नाम। प्रहलाद महाराज कहते हैं भगवान नरसिंह देव से कि हे प्रभु, जीवों के लिए आप वैसे आवश्यक हैं जैसे मछलियों के लिए जल आवश्यक है, जल से बाहर करके मछली को किसी भी उपाय से सुखी नहीं किया जा सकता है। यह स्वरूप है मछली का कि जल में सुखी रहेगी, यही उसका स्वरूप है, परंतु उसको जल में न रख करके, उसके स्वरूप को न पहचान करके कोई व्यक्ति बहुत सौहार्द भाव से मछली को सुखी करने का दूसरा प्रयास करे तो सारे प्रयास विफल होंगे, मछली सुखी नहीं होगी। जैसे मान लीजिए मछली को कोई यह कहे कि इसको बासमती का राइस खिलाओ खूब अच्छा कुकिंग करके, अथवा सब प्रकार की मिठाइयां खिलाओ, खीर पिलाओ, और अथवा इसे झूला झुलाओ, झूला झूले कुछ हवा लगेगा तो ठीक हो जाएगी, वो तो जैसे हवा लगेगी और बिगड़ती जाएगी। दूसरा सुहृद आता है कहता है नहीं इसको बैवान पर घुमा दो कुछ, बैवान पर घुमाओ, चाहे तीसरा सुहृद आता है चौथा वो कहता है नहीं नहीं सुंदर गीत सुनाओ, वीणा बजाकर सारंगी बजा करके खूब गाओ इससे सुखी हो जाएगी। दूसरा कोई कहे नहीं मसाज करो, विविध तेल ला करके और इसके शरीर में लपेटो, यह करो वह करो, कोई कहेगा नहीं नहीं रेशमी कपड़ा सिला दो, जाड़ा लग रहा है ढक दो, स्वेटर पहना दो, जूता पहना दो, किसी भी हालत में मछली की हालत बिगड़ती जाएगी। तो इस तरह वास्तव में हम लोग कृष्ण के अंश हैं, हम लोग भी स्पिरिट हैं, स्पिरिचुअल हैं, तो बिना कृष्ण के संपर्क के हम सुखी हो ही नहीं सकते किसी भी उपाय से, और कुछ भी दे दिया जाए, स्वर्ग दिया जाए या इस पृथ्वी का भोग, कुछ भी, लेकिन जीव की हालत बिगड़ती जाएगी और बिगड़ती जा रही है। जीव यही समझते हैं कि इसको ये देना है सुखी हो जाएगा, ये हो जाएगा, नहीं नहीं। तो हरि भी साक्षात भगवान शरीर नाम आत्मा झसाणम इव तोयम इप्सितम, जैसे झकों के लिए मछलियों के लिए तोयम इप्सितम जल आवश्यक है, उस तरह से हरि आवश्यक है, श्री कृष्ण आवश्यक है जीव के लिए। तो इस तरह से मान लीजिए कोई सुहृद है और किसी जीव का वास्तव में हित करना चाहता है, परंतु जीव के स्वरूप का उसे ज्ञान ही नहीं कि है कौन। जैसे मछली का हित ऐसी है लेकिन उसको ये पता न हो कि मछली जल में सुखी रहती है, वो वो तो कहेगा कि इसको दूध में डाल दो, मछली को सौहार्द भाव से कहेगा कि जल में मत डालो, जल में क्या डालना है, खूब अच्छा दूध में डाल दो, दही में डाल दो, वो मर जाएगा, मछली मर जाएगी इस तरह से। तो जो भी यहाँ पर व्यवहार है अज्ञान में है। और एक और उदाहरण दिया जाता है सपना का। सपना में मान लीजिए कोई हितैषी किसी की सहायता कर रहा है, या कोई शत्रु उसको मार रहा है, उसका धन छीन रहा है, दोनों मिथ्या है। आगे श्री बलराम जी बताएंगे, कोई कुछ नहीं हेल्प कर रहा है और कोई कुछ नहीं बिगाड़ रहा है। इसलिए वो कहते हैं कि सुहृद दुर्हृद उदासीन इति देहात्मानी नाम विचार, कि यह हमारा सुहृद है और यह हमारा दुर्हृद है, इस प्रकार, और यह उदासीन है, इस प्रकार की भावना करना यह देह को मैं मानने वाले बहुत बड़े अज्ञानियों का विचार है। कौन किसका सुहृद है और कौन किसका दुर्हृद, क्या हित करेगा इसमें, वो क्या भौतिक हित करेगा, संसार चक्र में जीव पड़ा हुआ है, जन्म मरण में कर्म बंधन में है, यहाँ पर किसी को कुछ देना कुछ सहायता करना क्या उसका हित है, और कोई किसी का कुछ छीन लिया तो क्या अहित किया, जाल ही तो छीना, ये सब जितने हैं धन घर शरीर आदि भी ये सब आत्मा के लिए बंधन है, और कोई व्यक्ति इनको छीन लेता है तो वह अहित किया ऐसा नहीं कहा जा सकता, और कोई इस जाल को बढ़ा दिया और टाइट कर दिया तो कहा जाए कि सुहृद है ऐसा नहीं कहा जा सकता है, या कोई उदासीन, तो इति देहात मानिना, ये देह को ही आत्मा मानने वालों का विचार। तो ये आत्मा, आत्मा एक ही है, एक का यहाँ अर्थ है एक समान रहने वाला, और परह का अर्थ है शुद्ध, यह परह का अर्थ है, परह का डायरेक्ट ये अर्थ है कि देह से भिन्न, पर आत्मा पर है अर्थात शुद्ध है बिल्कुल। सर्वेषामपि देहिनां, जितने भी देहधारी हैं, 84 लाख जोनियों में जितने भी देहधारी हैं, प्रत्येक देह के भीतर आत्मा वास्तव में बिल्कुल शुद्ध रूप में है और एक है। लेकिन नानेव गृह्यते मूढ़ तथा ज्योतिर्जथा नभ, लेकिन जो मूढ़ हैं, ना समझ हैं, वे आत्मा को अनेक रूप में ग्रहण करते हैं। जैसे एक शरीर में एक आत्मा है, तो वही आत्मा वृक्ष शरीर में जाता है या पशु शरीर में जाता है, अथवा मनुष्य शरीर में भी है तो उस आत्मा को कोई मानता है कि हमारा शत्रु है, कोई मानता है कि हमारा मित्र है, कोई मानता है कि उदासीन है। आत्मा जैसा है वैसा है, शरीर से बिल्कुल भिन्न है, परंतु एक जीव के प्रति लोगों की भिन्न भिन्न भावना होती है। इसलिए श्री बलराम जी कहते हैं मूढ़ जो नहीं जानते हैं आत्मा के स्वरूप को, वे आत्मा को बहुत प्रकार से वर्णन करते हैं, शरीर के अनुसार वर्णन करते हैं। जैसे शरीर काला है तो वो समझते हैं कि वो काला व्यक्ति है, आत्मा भी काला है। तथा कथित ज्ञानियों के समाज में इस बात की चर्चा होती है। जब जड भरत जी पालकी ढो रहे थे राजा रहुगण की, तो राजा रहुगण तर्क में कह रहे हैं कि हम तो ऐसा समझते थे कि शरीर के अनुसार आत्मा है, यदि राजा का शरीर है तो आत्मा भी राजा ही है, कंगाल का शरीर है तो आत्मा कंगाल है। और उन्होंने जोर भी दिया इस बात पर कि भले आत्मा प्रकृति से परे हो, परंतु प्रकृति के संग में है, शरीर के संग में है, तो शरीर का प्रभाव तो उस पर पड़ेगा ही, तो अछूता कैसे रह सकता। यहां पर भगवान कह रहे हैं कि पर शुद्ध है आत्मा, वो शरीर से बिल्कुल भिन्न है, शरीर चाहे कटे सड़े गले काला हो गोरा हो अमेरिकन हो इंडियन हो कुछ भी हो, आत्मा पर थोड़ा भी अंतर नहीं पड़ता है, बिल्कुल शरीर से परे है। इसलिए भगवान गीता में इस बात को और ज्यादा विस्तार से कहते हैं, नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदे अंत्यापो न शोषयति मारुतः। इसको हवा नहीं सुखा सकता, जल गीला नहीं कर सकता, अस्त्र शस्त्र काट नहीं सकते और अग्नि जला नहीं सकते, कुछ भी नहीं कर सकता। यही है पर शुद्ध आत्मा रहता। परंतु मूढ़ जन आत्मा को शरीर के अनुसार देखते हैं, देश के अनुसार देखते हैं, काल के अनुसार देखते हैं, इस तरह मूढ़ है। गीता में भगवान इस शब्द का प्रयोग करते हैं, शरीरम जद वापनोति जच्चापित क्रामति स्वर, ऐसे कहते हैं। और हाँ, दूसरे श्लोक में भगवान कहते हैं कि उत्क्रांतम स्थितम वापि भुंजानम व गुणान्वितम विमूढ़ानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषः। किस तरह जीव उत्क्रामंतम शरीर छोड़ता है, उत्क्रामंत स्थितम वापि, यह शरीर में आत्मा रह रहा है अथवा शरीर को छोड़ता है, तो शरीर में रह करके भुंजानम व गुणान्वितम देह में अविष्ट होकर किस तरह विषयों को भोगता है इंद्रियों के द्वारा, तो विमूढ़ नानुपश्यन्ति, विमूढ़ लोग इसे नहीं जान पाते। विमूढ़ का अर्थ प्रभुपाद जी गधा किए हैं एकदम। मनुष्यों में इतना डल है कि उनको सीधे आयस पाते हैं प्रभुपाद, विमूढ़ गधे नहीं समझ पाते। वो शरीर को ही आत्मा मानते हैं, जानते हैं शरीर ही सब कुछ है, शरीर गया तो चला गया। और कुछ तो ये भी मान्यता रखते हैं कि शरीर ही आत्मा है, इसको कब्र में खूब सजा करके रखो, एक दिन जजमेंट का दिन आएगा तो ये उठेगा, ऐसा बोलते हैं। और आत्मा तो गया, वहां जजमेंट में देर नहीं होती है, पहले ही सब कंप्यूटराइज्ड है, सब कुछ पहले ही फाइनल हो जाता है, शरीर से निकले बस। ऐसा नहीं है कि अब इतना देर ईश्वर के दरबार में होगा तब तक शरीर सड़गल कर खत्म हुआ तो उठेगा कौन, ये विचारणीय बात है। वो दिन आएगा, पता नहीं कब वो जजमेंट होगा, तब तक क्या जीव इसी तरह से सोया रहेगा? मतलब तो जीव गया, भगवान गीता में कहा था शरीर छोड़कर चला जाता है, जातस्य हि ध्रुवम जन्म ध्रुवम जन्म मृतस्य च, मृतस्य च, जो मर गया अर्थात शरीर को छोड़ दिया, उसको दूसरा शरीर लेना है, गया दूसरे शरीर में, जजमेंट लेने के लिए वो कब्र में नहीं पड़ा रहेगा लाखों वर्ष। इसको कहते हैं विमूढ़ा, विशेष मूढ़ा, विमूढ़ा नानुपश्यन्ति, वो नहीं जानते। पश्यन्ति ज्ञान चक्षु, जिनको ज्ञान का चक्षु है, ज्ञान का नेत्र है, वे लोग जानते हैं कि आत्मा शरीर में भोग रहा था विषयों को, आत्मा सुख दुख का अनुभव कर रहा था, आत्मा शरीर में था, शरीर को चालित कर रहा था, आत्मा चला गया। ज्ञान चक्षु, जिनको शास्त्र का ज्ञान है, गुरुजनों का संग है, वे लोग इस बात को समझ जाते हैं। कभी कभी लोग तर्क करते हैं कि हिंदू लोग ये मरे हुए लोगों को पानी देते हैं, क्या वो पानी मिल जाता है उनको, कई बार तर्क करते हैं। यहां तक तर्क में कहा गया है कि यदि मरे हुए लोगों को कुछ चीज पहुंचाया जा सकता है जबकि उनका पता नहीं है कि कहां गए, तो रास्ते में जो लोग जाते हैं प्लेन में ट्रेन में, तो उनको बांध करके भोजन देने की क्या जरूरत है, तो पता रहता है कि यहां पर है, उनको क्यों नहीं भेज देते हैं, ये तर्क देते हैं, रास्ते में क्यों नहीं भेज देते हैं। यदि यह सत्य है कि मृतात्मा को भेजा जा सकता है, तो फिर सवारी में चढ़े हुए आदमी को क्यों नहीं भेजा जा सकता है, उस समय देने की क्या जरूरत है शुरू में, ये तर्क कर रहा था एक व्यक्ति। इस प्रोसेस पर विचार नहीं करता है। देखिए, प्लेन पर चढ़े हुए व्यक्ति के लिए तो शुरू में ही बांध करके दे सकते हैं, अथवा लास्ट में भी पहुंचा सकते हैं, बीच में देने की तो कोई व्यवस्था नहीं है वहां। बीच में कौन ले जाकर के देगा, दूसरे जहाज से टकराएगा, मर जाएंगे सभी, कौन देगा? विधि नहीं है। तो जो ये विधि काम नहीं करते है तो लोग समझते हैं कि बस और जगह भी ये विधि नहीं है, लेकिन ईश्वर की बनाई हुई विधि है कि कोई वस्तु उस व्यक्ति को कैसे मिल जाती है समय पर। ये सूक्ष्म विधियां हैं परंतु सत्य है। यहां पर उसका पुत्र या भाई या कोई संबंधी उसके लिए पिंडदान करता है, कुछ शुभ कर्म करता है, तो वह जाकर के फल मिलता है उसे, अमृत के रूप में, वस्त्र के रूप में, घर के रूप में, या यहां तक वो मुक्त भी हो जाता है, जैसे धुंधकारी मुक्त हो गया गोकर्ण जी के भागवत से। स्पष्ट शास्त्रों में सब उल्लेख। तो जो आत्मा को आत्मा के रूप में समझते हैं वे तो ठीक समझ जाएंगे, लेकिन देह को ही जो आत्मा समझते हैं वे गधे नहीं समझ पाएंगे इस बात को, वो तो कभी नहीं समझे। तो विमुद्धा नानुपश्यंती पश्यंती ज्ञान चक्षुष। श्री बलराम जी यहां कहते हैं कि जो मूढ़ होते हैं वे आत्मा को अनेक रूप में देखते हैं। उदाहरण दे रहे हैं जो दो, जथा ज्योति जथा नभ। जथा ज्योति, ज्योति का अर्थ होता है यहां जैसे चंद्रादि ज्योति, चंद्रमा या सूर्य, और नभ का अर्थ है आकाश। वास्तव में आकाश में देखा जाए तो चंद्रमा जैसे हैं वैसे हैं, परंतु अलग अलग बर्तन में जिसमें पानी भरा पड़ा है या तेल है, लोग अलग अलग देश में अलग अलग स्थान पर यदि चंद्रमा को देखें, जथा ज्योति, ज्योति को, चंद्रमा को अगर देखें, तो जहां जिस स्थिति में है वैसे वो देखेंगे। यदि पानी हिल रहा है हवा के वेग से, पवन के वेग से यदि जल संचालित हो रहा है, और वे केवल वहीं पर देख रहे हैं चंद्रमा को, आकाश में नहीं देख रहे हैं, तो वे कहेंगे कि चंद्रमा कटा छटा है, टेढ़ा है, झिलमिल कर रहा है। उनको चंद्रमा गोलाकार दिखाई नहीं दे सकता है। पूर्णिमा का चंद्रमा यहाँ ये तात्पर्य है कि पूर्णिमा का दिन है, चंद्रमा आकाश में उगा हुआ है, परंतु अलग अलग स्थान में लोग देख रहे हैं, उपाधि से ग्रस्त चंद्रमा को देख रहे हैं। उपाधि का अर्थ ये है, उपाधि का अर्थ है जल में प्रतिबिंबित चंद्रमा। तो जल में चंद्रमा प्रतिबिंबित हो रहा है तो जल के जो धर्म है कंपन आदि वो चंद्रमा में दिखाई पड़ेंगे, जबकि चंद्रमा जल से बिल्कुल अछूता है, वो लाखों करोड़ों योजन दूर है, परंतु उसको जल के भीतर व्यक्ति देखेगा तब तो लगेगा कि चंद्रमा कटा छटा टेढ़ा है, ऐसा है ऐसा है। इसी तरह जो व्यक्ति शरीर की उपाधि से बांध करके जीव को देखता है तो वह तो देखेगा, अनेक प्रकार से जीव को देखेगा, वो काला है, गोरा है, वो पशु हो गया, वो चींटी हो गया, वो पक्षी हो गया, वो ये हो गया, हमारा सुहृद हो गया, हमारा दुहृद हो गया, लेकिन वास्तव में आत्मा की सहज जो स्थिति है उसमें देखे तो उसी चंद्रमा की तरह दिखाई पड़ेगा जो बिल्कुल अचल है, स्थिर है, उसमें कोई झलमलाहट नहीं है, टेढ़ापन नहीं है, कटा छटा नहीं है, इस तरह से देखेगा। तो जथा ज्योति, जैसे ज्योति को घट उदकादिशु से श्रीधर स्वामी जी कहते हैं, यदि चंद्र के प्रतिबिंब को या सूर्य के प्रतिबिंब को जल आदि में देखेगा तो वो व्यक्ति नहीं समझ पाएगा। तो दोनों तरह से अज्ञान छा जाता है। तो श्रीमद् भागवतम में वसुदेव जी उदाहरण दिए हैं, कंस को समझा रहे हैं, तो वे कहते हैं कि किस प्रकार व्यक्ति शरीर को आत्मा और आत्मा को शरीर मान लेता है, ये भ्रम हो जाता है। वो भी यहीं पर ऐसा ही उदाहरण दिए हैं, ज्योतिर्जथैवोदक पार्थिवे स्वदः समीर वेगानुगतम विभाव्यते। जैसे किसी बर्तन में हम जल लें रात्रि के समय और बाहर हो और चंद्रमा उगा हो, तो जल में हम देखते हैं कि चंद्रमा दिखाई पड़ रहा है, लेकिन चंद्रमा जल के गुण से अविष्ट दिखाई देगा, जल पर हवा चल रहा है और हवा के वेग से जल हिल रहा है, तो जल के हिलने से चंद्रमा का जो प्रतिबिंब है वो बहुत कंपनशील दिखाई देगा, कई टुकड़ों में चंद्रमा दिखाई देगा, कभी लंबा दिखाई देगा, कभी झिलमिल झिलमिल ऐसे अस्थिर नहीं दिखाई देगा। और इसके साथ ही साथ एक और बात हम लोग देखते हैं कि जल चमकता हुआ दिखाई देता है, चंद्रमा टेढ़ा दिखाई देता है कांपता हुआ और जल चमकता हुआ दिखाई देता है, तो जल में जो चमक है वह जल की चमक नहीं है, वो चंद्रमा की चमक है। लेकिन चंद्रमा में जो टेढ़ापन दिखाई दे रहा है, कटा छटा दिखाई दे रहा है, वो चंद्रमा का धर्म नहीं, वो जल का धर्म है। तो जल जो है वो शरीर स्थानीय है और चंद्रमा आत्मा स्थानीय है। तो जैसे जल में अपनी चमक नहीं है, चंद्रमा की चमक है, उसी तरह से इस शरीर में जो चेतना है यह शरीर का धर्म नहीं है, ये शरीर की चेतना नहीं है, आत्मा की चेतना इसमें रिफ्लेक्ट हो रही है। आत्मा है इसलिए हाथ चल रहा है, पैर चल रहा है, आंख देख रही है, कान सुन रहा है, नाक सुन रही है। तो जैसे जल में चमक होती है, वो जल की चमक नहीं होती है, यदि चंद्रमा हट जाए या पर्दा डाल दिया जाए तो जल नहीं चमकेगा, उसी तरह से आत्मा को शरीर से अलग कर दिया जाए तो फिर शरीर में कोई चेतना नहीं रह जाएगी। तो यह है आत्मा के धर्म को शरीर पर आरोपित करना। आत्मा का धर्म है ज्ञान और आनंद, सहज आनंद, सहज आनंदमय आत्मा है, ज्ञानमय है। तो शरीर को हम लोग समझते हैं कि यह चेतन है और यह आनंदमय है, इसमें जो भी आनंद की अनुभूति हो रही है वास्तव में वो आत्मा की अनुभूति है, वो आत्मा के कारण आनंद है। इसी कारण से श्रील वसुदेव जी कहते हैं कि यहां तक कि सुअर के शरीर में भी जब आत्मा रहता है तो आत्मा का आनंदांश विकीर्ण होता है देह में, इसलिए वही देह व्यक्ति को बहुत प्रिय लगता है, कोई भी हो, क्योंकि आत्मा उसके साथ है। किसी बर्तन में आग का गोला रखा जाए तो बर्तन को उत्तप्त कर देता है, उसी तरह से आत्मा शरीर में है, मन में है, अतः वह शरीर को आनंदमय कर देता है। यह आनंद शरीर का नहीं, आत्मा का है। अच्छा, तो जैसे अभी दूसरा उदाहरण है किस तरह शरीर के धर्म को आत्मा पर आरोपित करते हैं। तो जैसे चंद्रमा कटा छटा दिखाई देता है, झलमल कंपन युक्त दिखाई देता है, उसी तरह से शरीर के धर्मों को हम लोग आत्मा पर आरोपित करते हैं। आत्मा वास्तव में आनंदमय है, चिन्मय है, लेकिन शरीर के धर्म को आरोपित करते हैं। शरीर काला, आत्मा काला है, आत्मा ये पक्षी है, आत्मा यह है, आत्मा वह है, आत्मा यह है, आत्मा नहीं है। तो शरीर के धर्म को, धर्म मतलब स्वभाव, शरीर के धर्म को आत्मा पर आरोपित करते हैं और आत्मा के धर्म को शरीर पर आरोपित करते हैं, ये दोनों तरफ से भ्रम होता है। इसको श्री बलराम जी यहाँ कहते हैं मूढ़ ही नानेव गृह्यते। जो मूढ़ होते हैं वे लोग आत्मा को अनेक प्रकार से देखते हैं, जथा ज्योति जथा नभ, और इसी तरह से नभ आकाश, आकाश जैसा है वैसा है और बिल्कुल निर्लिप्त है। भगवान से इसको उपमा दी जाती है, आत्मा से उपमा दी जाती है, किस तरह से निर्लिप्त है आकाश और कितना महान है, कभी कट नहीं सकता, बंट नहीं सकता, लेकिन फिर भी मूढ़ लोग कहते हैं कि आकाश कट गया है। जैसे घटाकाश, घड़ा है तो घड़ा के भीतर जो आकाश है उसको घटाकाश कहते हैं, घड़े में बंद है आकाश। लेकिन आप जरा विचार कीजिए, यहाँ पर एक घड़ा है, हम कहते हैं कि आकाश घड़े के आकार में हो गया है, लेकिन घड़े को हटाते जाइए धीरे धीरे तो जो आकाश था वो जेव कहते हैं उसमें रहता है और स्थान बदल जाता है। तो कहाँ का आकाश कटा, आकाश कभी कट नहीं सकता। यहाँ पर हम दीवार बना दें तो ऐसा नहीं कि आकाश उतना कट गया, या दीवार गिर गया तो आकाश नया बन गया, और आकाश में बादल घिरते हैं, हवाएं चलती हैं, कुछ भी होता है, लेकिन इसके बाद ऐसा नहीं है कि अब जाड़े के दिन में बहुत बादल छाया है, बर्फ पड़ा है तो आकाश ठंडा हो गया है। आकाश ठंडा नहीं होता, हवा ठंडा होती है। आकाश जैसे है वैसे है। यदि आग लगे आकाश में तो आकाश गर्म नहीं होता है, और बर्फ पड़े तो ठंडा नहीं होता है। बादल घिरे चाहे बादल न रहे, अनावरण प्रकाश रहे, आकाश आकाश। घर बन जाता है तो लगता है कि मठाकाश। इसी का शंकराचार्य जी इन शब्दों का प्रयोग कर मठाकाश घटाकाश, मठ के अंदर आकाश बंद हो गया, जैसे इस रूम में आकाश है चौकोर। लेकिन यह रूम न भी रहे तभी आकाश यहाँ का ज्यों के त्यों रहेगा। तो जैसे मूढ़ लोग आकाश, एक ही आकाश को अनेक रूप में देखते हैं, और चंद्रमा आदि के ज्योति को जल आदि में अनेक प्रकार से देखते हैं, वैसे ही आत्मा वास्तव में एक है, लेकिन लोग उपाधि से युक्त आत्मा को अनेक प्रकार से देखा करते हैं। शरीर से बाध करके इसको देखना चाहिए। एक व्यक्ति ने बहुत अच्छा शब्द एक बार कहा था, हमको याद नहीं आ रहा है कहां पर। वो कह रहा था कि स्वामी जी जीते तो सब हैं, लेकिन शरीर से थोड़ा अलग होकर जीना सीखना चाहिए। शरीर से अलग होकर के जीना सीखना चाहिए। कैसे अलग रह करके सीख? अलग रहने का मतलब है कि विचार से, ज्ञान से अपने को शरीर से भिन्न समझे। तो आत्मा वास्तव में शरीर से भिन्न है और शुद्ध है। सर्वे समपि देहिना, भले वो सुअर के देह में है अथवा देवता के देह में है, इससे आत्मा में कोई अंतर नहीं हो सकता है। सर्वे समपि देहिना, आत्मा शुद्ध है, लेकिन मूढ़ लोगों से भिन्न भिन्न प्रकार से देखते हैं। तो इसमें आत्मा का ज्ञान दिया भगवान श्री बलराम जी ने। लेकिन प्रश्न ये हो सकता है, श्रीका श्रीधर स्वामी जी लिखते हैं, कुतस्तर ही न चंद्रादिवत आत्मानं एकम शुद्धं प्रतिमा। ठीक है, आप कहते हैं कि चंद्रादि की तरह, ज्योति की तरह और आकाश की तरह आत्मा है, लेकिन जल आदि में या घट आदि में मूढ़ लोग उसे अनेक प्रकार से देखा करते हैं, परंतु हम लोग तो साफ देखते हैं कि चंद्रमा आकाश में है, और आकाश को भी हम लोग देखते हैं कि यह निर्लिप्त है। तो आत्मा की प्रतीति अनुभूति क्यों नहीं हो पाती है इस प्रकार से कि आत्मा बिल्कुल भिन्न है शरीर से? तो श्री बलराम जी कहते हैं कि देह आद्यंत वानिश द्रव्य प्राण गुणात्मक आत्मन्य विद्या क्लृप्त संसार यति देहिनम। देह और देहिनम, इस श्लोक में दो शब्द का प्रयोग किया गया है। देह का अर्थ तो स्पष्ट है, ये देह दो प्रकार का देह होता है, सूक्ष्म देह और स्थूल देह। तो सूक्ष्म देह के लिए ही वर्णन किया जा रहा है और स्थूल के लिए भी। तो देह क्या है? ऐसा देह, यह देह आद्यंतवान, आदिवान अंतवान, आद्यंतवान, इसका प्रारंभ होता है और इसका अंत होता है। अंतवान है और आदिवान है, युक्त है, लगा हुआ है। शुरुआत होती है इसकी और इसका नाश होता है। क्योंकि आत्मा इससे बिल्कुल भिन्न है, आत्मा की कोई शुरुआत नहीं और कोई अंत नहीं है। लेकिन ऐसा देह, यह देह आद्यंतवान, वान दोनों जगह जोड़ना पड़ेगा, आदिवान और अंतवान, आदि से युक्त है, अंत से युक्त है। और है क्या? देह का वर्णन किया जा रहा है कि देह का प्रारंभ होता है और देह का अंत होता है। बीच में इसमें मैटेरियल क्या लगा है इस देह में? द्रव्य प्राण गुणात्मक, आत्मक का अर्थ होता है मात्रा। देह किस चीज से बना है? और तीन चीज से, अधिभूत, और अध्यात्म और अधिदैव इसको कहते हैं। इस शरीर में कुछ द्रव्य है, द्रव्य पांच है, भूमि रापो जलम पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश, इनको द्रव्य कहा गया है। सभी प्राणियों के देह में ये पांच चीजें हैं, केवल पांच चीज रहेंगे इसी से देह कह देंगे ऐसी बात नहीं है। इसी के कारण ये देह नहीं है। जैसे मान लीजिए किसी बस में लोहा लगा है, रबड़ लगा है, शीशा लगा है, तो ये सारे सामान एक जगह ला करके रख दिए जाए तो इसे तो कोई ये नहीं कहेगा कि ये बस है या एक कार है, सामान रख देने से ही नहीं होगा। तो इस शरीर में केवल अगर यह कहा जाए कि पंच तत्वों से बना हुआ है, पांच तत्व इसमें है, तो इसी से शरीर नहीं हो जाता है। और क्या चाहिए? प्राण। प्राण का अर्थ है इंद्रिया, इसमें इंद्रिय चाहिए। इंद्रियां रहेंगी तभी इसको देह कहा जाएगा, ऐसे नहीं कहा जाएगा तो कहीं माटी और कहीं जल ला करके अलग अलग रख दिया जाए, चाहे एक में ही रख दिया जाए, सान दिया जाए। माटी के साथ पानी साना जाता है और आग में पका दिया जाता है, हवा में सुखा दिया जाता है, आकाश में खड़ा कर दिया जाता है, तो इससे वो देह नहीं हो जाएगा, उसमें इंद्रियां चाहिए। अच्छा, इंद्रियों के अतिरिक्त तो और भी चीज उसमें लगा है, गुण। यहाँ गुण शब्द का अर्थ है इंद्रियों पर अधिष्ठित देवता, जो इंद्रियों को चालित करते हैं, इनको अधिदैव कहते हैं। और इंद्रियों को, मन को अध्यात्म कहते हैं और पंच तत्वों को द्रव्य कहा जाता है। तो भगवान कह रहे हैं कि द्रव्य प्राण गुणात्मक है, यह शरीर पंच तत्वों से बना हुआ है और इसके साथ इसमें इंद्रियां हैं और इंद्रियों के नियामक देवता है। इतना जब कंप्लीट होता है तब इसको देह कहा जाता है। देह आद्यंतवान ये सब प्राण, द्रव्य प्राण गुणात्मक इस तरह से है। लेकिन भूल क्या हुई है जीव में कि आत्मनि अविद्या क्लिप्त, आत्मा के स्थान में इसी देह को मान लेते हैं मूर्ख लोग। देह अलग वस्तु है, देही अलग है, देह वाला देह से भिन्न है, देह वाले को देही कहते हैं। जिसके पास धन है तो उसको धनी कहते हैं, जिसके पास देह है उसको देही कहते हैं। जैसे धन से धन वाला अलग है, उस तरह से देही अलग है। परंतु देही इतना बेवकूफ हो जाता है, इतना उसकी बुद्धि समाप्त हो जाती है कि वह आत्मा के स्थान में इस देह को मानता है। आत्मनि अविद्या क्लिप्त, आत्मा के अपने स्वरूप में इस देह का ही वह अध्यास करता है कि मैं देह हूँ, देह हूँ। और इसी भावना के कारण यह जो देह है, सूक्ष्म देह, वह देहिनम संसारयति, देही को, आत्मा को संसारयति। संसारयति का अर्थ है कि संसार में चलाता रहता है, जन्म मरण भूख प्यास ये सब सहना पड़ता है देही को, इसके कारण होता है। देह देही को संसारयति, इसे बहुत सुंदर शब्द का प्रयोग कर रहे हैं भगवान। देहिनम ऐसा देह संसारयति, आप बताइए चिन्मय वस्तु को, जीव को जड़ शरीर लताड़ रहा है संसारयति। संसारयति का अर्थ है कि वो डालता है, गर्भ में डालता है, मरण में डालता है, रोग दुख भूख प्यास आदि, ये सब आत्मा में नहीं है। लेकिन आत्मा के स्थान में देह को कर दिया गया है क्लिप्त। क्लिप्त का अर्थ होता है बिल्कुल रख देना। रखने का अर्थ है कि मन में अभिनिविष्ट हो जाना, सोचना कि मैं देह हूँ, मैं देह हूँ, मैं यह हूँ, वह हूँ। इसीलिए देही को इस देह के अनुसार चलना पड़ता है। तो यही इसके जन्म मरण आदि का कारण है, यह देही कारण है। ऐसा देह जो आद्यंतवान है और द्रव्य प्राण गुणात्मक है, यह आत्मा के स्थान में आकर के आत्मा को अपने कब्जे में लेकर के उसको फिर जन्म मरण में डाले रहता है। तो नात्मनोन्येन संजोगो विजोगः चासतः सति तद्धेतुत्वात् तत्प्रसिद्धे भृगुरूपाभ्याम यथा रवेः। तब यह प्रश्न होता है कि जब देह के साथ इस तरह से संबंध है और संसार भी है, जैसा भगवान ने कहा कि आत्मा के स्थान में ये देह कब्जा कर लिया है, हो गया है। देह बेचारे क्या कब्जा किया है, वो आत्मा ही अज्ञान से मान लिया है कि मैं देह हूं और संसार में डाल ही दिया है, तब तो कैसे शुद्ध रहा। ननु देह संबंधे न अपि संसारे सति शुद्धत्वं गतम एव। अब तो इसकी शुद्धता चली गई ना, जैसे बलराम जी ने कहा कि यह शुद्ध है, पर है, लेकिन रुक्मिणी जी कह सकती है कि जब देह के साथ संबंधित है और आत्मा को जन्म मरण में डालता रहता है, तब तो आत्मा की शुद्धि गई, अब कहां शुद्ध रहा। तो श्री बलराम जी कहते नहीं नहीं नहीं, आत्मा फिर भी शुद्ध रहता है, आत्मा को इस देह से कुछ भी लेना देना नहीं। तब कहते हैं नात्मनोन्येन संजोगो विजोगः चासतः सति, हे सती तुम्हें अवश्य समझ जाओगी इस बात को। सती संबोधन के द्वारा कह रहे हैं, जो सत से युक्त है उसको सती कहते, तुम ठीक ठीक समझ जाओगी। इस आत्मा का अन्य वस्तु से अर्थात शरीर आदि से कभी भी संयोग नहीं होता है और कभी वियोग नहीं होता है। पहले तो कहे कि आत्मनि अविद्या क्षुलिप्त, अविद्या के कारण यह देह आत्मा के स्थान में रख दिया गया है। अब भगवान कह रहे हैं कि देह के साथ अन्य के साथ, यहां अन्य का अर्थ देह से बिल्कुल भिन्न, आत्मा से बिल्कुल भिन्न, देह के साथ आत्मा का कभी संयोग नहीं हुआ है और न हो सकता है, न वियोग हुआ है, वियोग भी नहीं है, संयोग भी नहीं है। तो संयोग नहीं है इसलिए वियोग नहीं है। क्यों नहीं? क्योंकि एक तो देह अन्य चीज है, आत्मा से उसका कोई मेल ही नहीं है, वो चिन्मय वस्तु है, वो दिव्य ये जड़ वस्तु है, इसलिए इसको अन्य कहा गया। जब दूसरी बात कहते असत, देह है असत है, ये है ही नहीं वास्तव में। असत का अर्थ होता है संस्कृत में जो नहीं है उसका, तो जो नहीं है उस वस्तु से आत्मा का संबंध कैसे हो सकता है। आत्मा तो है, भगवान ने गीता में कहा ना सतो विद्यते भावो ना सतो विद्यते सतः, ना भावो विद्यते सतः, उभयोरपि दृष्टंतस्तनयोस्तत्वदर्शिभिः। तत्वदर्शियों के द्वारा दोनों का रहस्य बिल्कुल जान लिया गया है। ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः, जो असत चीज है, चीज नहीं कहेंगे वास्तव में, जो असत है उसकी कभी सत्ता नहीं है। ना सतो विद्यते भाव, असत भाव न विद्यते, भाव का अर्थ एग्जिस्टेंस, जो असत है उसका कभी एग्जिस्टेंस नहीं है और जो सत है उसका कभी भी अभाव नहीं है, वो रहेगा ही रहेगा ही। तो आत्मा एक वस्तु है, शरीर कोई वस्तु नहीं है, ये असत है। यह तो आत्मा उसके साथ हो रहा है, आत्मा के प्रभाव से टिकता है, नहीं तो बिखर जाता है। देखा जाता है कि आत्मा शरीर को छोड़ करके चला जाता है तो शरीर फिर उस रूप में नहीं रह जाता है, यह बिखर जाता है, नष्ट हो जाता है। यह अपने आप में सब चीज नहीं है, इसका रूपांतरण हो जाता है, विक्रियाएं होती है, अनेक प्रकार से नष्ट हो जाता है। एक आत्मा लाखों लाख शरीर ग्रहण करता है और प्रत्येक शरीर विनाशी है, अद्यंतवान है, नष्ट हो जाता है। तो दो कारण से भगवान ये कह रहे हैं कि आत्मा का कभी संयोग नहीं होता है देह से। एक तो यह अन्य है, आत्मा का जो स्वभाव है उसे बिल्कुल भिन्न है, और दूसरी बात यह है कि यह नॉन एग्जिस्टेंस, नॉन एग्जिस्टेंट वस्तु है, ये शरीर है नहीं, पहले था नहीं, बाद में रहेगा नहीं। तो यह भी एक सिद्धांत है कि जो वस्तु पहले नहीं रही है और बाद में नहीं रहती है वही समय भी नहीं है, ये सिद्धांत है। पहले नहीं था और बाद में नहीं रहेगा और वर्तमान में भी है नहीं, एक भ्रम हो रहा है। और आत्मा तो पहले से ही है, अजह शाश्वतोयम पुराणो, यह अज है, शाश्वत है, नित्य है। तो यह कैसे माना जाएगा? आत्मा को कहा जाता है कि वह अनेक शरीर धारण करता है, शरीर में बुढ़ापा का दुख भोगता है, ये भोगता है, लेकिन भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि आत्मा का शरीर से कभी संयोग नहीं हुआ है न वियोग होगा। तो ठीक है, एक बात तो समझ में आ जाती है कि संयोग नहीं है, तो संयोग नहीं है तो इसका अर्थ वियोग है, लेकिन वे कह रहे हैं न वियोग, वियोग भी नहीं है। आत्मा का देह से वियोग नहीं है, यह बात बहुत कम समझ में आ रही है। तो इसका समाधान ये किया जाता है कि यदि आत्मा के साथ कभी संयोग रहा होता, देह का, देह के साथ आत्मा का संयोग कभी रहा होता, तब कहा जाएगा ना कि वियोग होता है, लेकिन संयोग ही नहीं रहा इसलिए वियोग नहीं है। अथवा कभी भी वियोग नहीं रहा है इसलिए सदा संयोग है, ऐसे इसको कह सकते हैं, लेकिन यह गलत हो जाएगा। कभी भी आत्मा का इस शरीर से कोई संपर्क नहीं हुआ है और कभी यह दूर भी नहीं हुआ है आत्मा से। इसका मतलब यह है तब हेतुत्व तब प्रसिद्ध दृग रूपाभियान जथा रवे, उदाहरण द्वारा हम लोग समझ सकते हैं। वास्तव में शरीर से आत्मा का वियोग नहीं होता है, अगर शरीर से वियोग हुआ तो शरीर रहता ही नहीं है, उसको शरीर नहीं कहेंगे, और तब तब तक संयोग रहेगा, नहीं संयोग नहीं रहेगा क्योंकि अन्य नहीं, बिल्कुल भिन्न है तो संयोग भी नहीं है। तब हेतुत्वात तब आगे बता रहे हैं, जैसे आंख है और कोई वस्तु है, हम लोगों की आंखें हैं, आंख से हम कुछ देखते हैं, वस्तु नाना प्रकार के देखते हैं, लेकिन इन दोनों के कारण सूरज है। यदि सूरज न उगे तो वस्तु हम देख नहीं पाएंगे, आंखों की शक्ति नहीं रहेगी, वो वस्तु भी दिखाई नहीं देंगे। प्रकाशक और प्रकाश्य दोनों की सत्ता एक प्रकार से नहीं रहती है। अच्छा, तब अभी प्रश्न होता है कि क्या भगवान सूरज का संयोग हमारी आंखों से होता है, उन वस्तुओं से, अथवा वियोग होता है? वास्तव में सूर्य उगता है, बहुत वस्तुओं को प्रकाशित करके चला जाता है, लेकिन सूरज का संपर्क संयोग इन वस्तुओं से नहीं होता है, न आंख से होता है। सूरज रोज चले जाते हैं, एक प्रकार से कह सकते हैं कि सूरज का वियोग भी नहीं है क्योंकि आंख को डायरेक्ट प्रकाशित कर रहा है और वस्तु को भी प्रकाशित कर रहा है, तो कहा जाएगा कि इनके साथ सूरज का संयोग है, परंतु वास्तव में संयोग नहीं है और वियोग भी नहीं है, क्योंकि सूरज के अभाव में अथवा किसी दीपक के अभाव में हम उस वस्तु को देख नहीं पाएंगे, आंखों की वो सत्ता नहीं मानी जाएगी, आंख में शक्ति नहीं रहेगी देखने की, ना वो वस्तु प्रकाशित हो पाएगी। तो इसी प्रकार से जैसे सूरज आंख को और वस्तु को दोनों को प्रकाशित करता है, उसी तरह से आत्मा जब किसी वस्तु के संपर्क में आता है तो उसमें चेतना भर देता है, तो जड़ शरीर भी संचालित होने लगता है और उसमें रहने वाले जैसे इंद्रियां आदि हैं वो भी सचेतन हो जाती हैं, देवता जो रहते हैं वो भी सचेतन हो जाते हैं, अन्यथा वे कार्य नहीं कर सकते। लेकिन जैसे सूर्य इन वस्तुओं को प्रकाशित करता है, आंख में देखने की शक्ति देता है, लेकिन फिर भी सूर्य निर्लिप्त है और चला जाता है, उसको इससे कोई मतलब नहीं, वैसे ही इस देह में आत्मा रहता है पर फिर भी नहीं रहता है, वो इतना निर्लिप्त है। इस शरीर में रहा, हाथ को चालित किया, पैर को चालित किया, कितना भाषण किया, बोला, लेकिन शरीर छोड़कर चला जाएगा। तो जिस समय शरीर में लगता है कि आत्मा है, वास्तव में है नहीं, शरीर से उसका कोई संपर्क नहीं है और शरीर से वियोग भी नहीं है, इस माने में कि उसके बिना इसकी सत्ता रहती नहीं है, देह से वियोग नहीं, उसकी सत्ता के बिना देह रहता नहीं है और देह जब तक है तो इसके साथ उसका संपर्क नहीं है। यह समझने की बात इस तरह से है, केवल आत्मा तटस्थ भाव से वास्तव में इसमें चेतना का संचार करके चला जाता है, इस शरीर से वो प्रभावित नहीं होता है बहुत तरह, जैसे सूर्य आंखों से और रूप से संसार के प्रभावित नहीं होते हैं, लाखों लाखों कोटि कोटि आंखें हैं और रूप हैं, लेकिन भगवान सूर्य जाते हैं चले जाते हैं, उन पर इन सबका प्रभाव नहीं होता है, जबकि देखने की शक्ति वही देते हैं, वस्तुओं को प्रकाशित करते हैं, आंख में देखने की शक्ति देते हैं, लेकिन फिर भी चले जाते हैं। शाम को सूर्य डूबते हैं तो क्या हाहाकार करते हैं कि हाय हाय मैं इतने लोगों का उपकार किया, इतनी आंखों में शक्ति दिया देखने की इनकी वस्तुओं को, डूब ही जाते हैं, तो आत्मा चला जाता है। वो उस समय ये चिंता नहीं करता, हाय हाय इस देह में रहे हैं इतना दिन, अब क्या करें, चला ही जाता है आत्मा। तो इस तरह से देह के साथ उसका कभी संयोग नहीं है, वियोग नहीं है। अच्छा, अब ये कह रहे हैं कि जन्मादेयस्तु देह से विक्रिया नात्मनः क्वचित् कलानामिव नैवेन्द्र मृत्युर्हेष कुहुरिव। जन्म आदि जो विक्रिया है, जन्म लेना, बढ़ना, कुछ दिन रुकना, कुछ पैदा करना, क्षीण होना और अंत में समाप्त हो जाना, ये देह के धर्म है। जन्म देह जन्म लेता है, बढ़ता है, कुछ पैदा करता है, कुछ दिन टिकता है, इसका क्षीण होता है, इसका पूरा पूरा नष्ट हो जाता है, इसको जन्मादय कहते हैं। जन्म आदि जो विक्रिया है, परिणाम है, देहस्य, ये देह का होता है, न आत्मन क्वचित, किसी भी समय में आत्मा में सब नहीं होता है, सुने कि आत्मा बढ़ता है, आत्मा क्षीण होता है, आत्मा कुछ पैदा करता है, नहीं, देह की ये सब विक्रिया है। कलाना मिव नैवेन्द्र मृत्यु से कुहरी, जैसे चंद्रमा के कलाओं में ही घटना बढ़ना संभव होता है, चंद्रमा में नहीं, कलाना मिव न एवं इंदो। हम लोग चंद्रमा को आकाश में देखते हैं तो चंद्रमा का बहुत उपयोग है, फसलें पैदा करते हैं, औषधि पोसते हैं, प्रकाश देते हैं, लेकिन चंद्रमा का इतना बार उदाहरण भागवत में आया है ज्ञान देने के विषय में। चंद्रमा को हम लोग देखते हैं कि कृष्ण पक्ष में चंद्रमा घटता जाता है और शुक्ल पक्ष में बढ़ता जाता है, पूर्णिमा के दिन पूरा हो जाता है। वास्तव में चंद्रमा नहीं घटते हैं, चंद्रमा की कलाएं घटती हैं। कला का अर्थ होता है चंद्रमा के जिस भाग पर सूर्य का प्रकाश प्रतिफलित होता है और जो भाग चमकता है उसको कला कहा गया है। चंद्रमा रहता है पूरा, लेकिन जो भाग प्रकाशित होता है उसको कला कहते हैं। तो वो अगर बढ़ता है तो आदमी कहता है चंद्रमा बढ़ रहा है, रोज रोज बढ़ रहा है, या घट रहा है। वास्तव में चंद्रमा घटता बढ़ता नहीं है, चंद्रमा की कलाएं घटती बढ़ती हैं। चंद्रमा पर सूर्य का प्रकाश प्रतिफलित होता है या घटता जाता है। तो इस तरह से देह घटता है, चाहे बढ़ता है, चाहे मोटा होता है, चाहे क्षीण होता है, चाहे मरता है, जन्म लेता है, आत्मा नहीं। जन्म आदि विक्रिया आत्मा की नहीं है, देह की है। जैसे चंद्रमा में जो विकार दिखाया जाता है चंद्रमा का नहीं है, चंद्रमा की कलाओं का। कलाना निवर्णय वेन्दोर मृत्यु से कुहरी वह, अच्छा ठीक है, ये बात तो समझ में आ गई। तो फिर मृत्यु तो होती है ना आत्मा की, तब भगवान कहते नहीं नहीं नहीं, मृत्यु से कुहरी वह, जैसे चंद्रमा की कलाएं घटते घटते अमावस्या कुहू अमावस्या कहते हैं, अमावस्या आ जाती है तो उस दिन क्या चंद्रमा मर जाता है? उस दिन वो रहता ही है, पूरा ही रहता है जैसे है पहले से, लेकिन कुहू को ऐसा कहा जाता है अमावस्या को कि अब इस दिन चंद्रमा बिल्कुल खत्म हो गया। तो इसी तरह से शरीर के विनाश को ही यश मृत्यु इति व्यवहार, ये लोग कहते हैं कि आत्मा मर गया, मरा शरीर, लेकिन वे कहते हैं कि आत्मा मर गया। यह इस प्रकार से अज्ञान से व्यवहार किया जाता है। चंद्रमा बहुत सुंदर सहायक है ज्ञान देने में। भगवान दत्तात्रेय जी जो 24 गुरु बनाए हैं तो उसमें एक चंद्रमा भी गुरु है, और यही बात वहां वो कहते हैं कि चंद्रमा से हम ये सीखे हैं कि केवल देह में सब विक्रियाएं होती हैं, आत्मा में नहीं। जैसे चंद्रमा की कलाएं घटती बढ़ती हैं, चंद्रमा नहीं घटते बढ़ते हैं। वो यहाँ पर ज्ञान दिया गया है। हम लोग तो रोज चंद्रमा को उगते हुए देखते हैं, डूबते हुए देखते हैं, लेकिन शास्त्रों में इसके आधार पर बहुत सुंदर ज्ञान दिया गया है। तो देह में सब विक्रियाएं होती हैं, आत्मा में नहीं होती है। तो फिर भी एक प्रश्न होता है, ननु आत्मनो देहादि संबंधा भावे कथम भोक्तृ भोग्य भोग प्रतीति रीति आशंक्य स्वप्न दृष्टांते न समर्थयति इति। तो प्रश्न हो सकता है कि यदि देह के साथ आत्मा का पूरा पूरा अभाव है, देह के साथ इसका संबंध नहीं है, तो यह कैसे प्रतीति होती है कि मैं भोगता हूँ और यह वस्तु भोग रहा हूँ और इस तरह से भोग रहा हूँ? भोक्ता, विषय और भोग, इन तीनों की प्रतीति कैसे होती है? इस संसार में तो स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि मैं भोगता हूँ, मैं कोई चीज खा रहा हूँ या पहन रहा हूँ, और वह वस्तु है एक, जैसे मान लो ये स्वेटर है, तो मैं तो देख रहा हूँ कि मैं पहनने वाला हूँ और यह एक वस्तु है, और पहनना एक क्रिया है, तीनों तो देख रहे हैं। भोक्ता, भोग्य और भोग, इन तीनों की प्रतीति कैसे होती है जब है नहीं वास्तव में? जब मैं देह नहीं हूं और कोई वस्तु नहीं है इस तरह से, तो कैसे प्रतीति होती है? तब श्री बलराम जी स्वप्न के दृष्टांत से समझा रहे हैं। जथा सयाना आत्मानं विषयान फलमेव च अनुभूंते सत्यर्थे तथा प्रबुधो भवम। जथा सयान, जैसे सोया हुआ व्यक्ति सपना देखता है, तो तीन चीज देखता है, आत्मानं विषयान फलम। सपना में वो देखता है कि मैं हूं भोक्ता, चाहे सुख भोक्ता चाहे दुख भोक्ता वो अलग बात है, लेकिन अपने को देखता है सपना में, मैं हूं और कुछ विषय है, कुछ भोग्य वस्तुएं हैं, और फल भोग भी देखता है, सुख दुख आदि का अनुभव भी करता है। ये तीनों चीजों सपने में देखा करता है, जबकि तीनों वहां नहीं है बिल्कुल। सपने में तीनों नहीं है, न तो भोगता है और न तो वस्तुएं हैं और न तो वहां वो भोग की क्रियाएं हो रही है। लेकिन सपना में आदमी देख सकता है कि मैं पक्षी बन करके उड़ रहा हूं, कोई ऐसे देख सकता है, लेकिन वो पक्षी नहीं है, उड़ना नहीं है, हवा नहीं है, आकाश नहीं है, कुछ नहीं है। सोया हुआ व्यक्ति सपना में स्वयं ही अज्ञान से इन सब वस्तुओं का निर्माण कर लेता है, देखता है, लेकिन है नहीं वास्तव में कुछ भी। सोया हुआ आदमी देख सकता है कि मैं अपने घर में ये काम कर रहा हूँ, वो काम कर रहा हूँ, इधर बैठा हूँ, उधर बैठा हूँ, वहीं पर जगा हुआ कोई